ओम शांति। तो आज की क्लास में हमारे बीच पधारे हैं हमारे मधुबन निवासी आदरणीय राजयोगी सुशील भाई जी। करतल ध्वनि से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आप हिमाचल प्रदेश के हैं लेकिन बाबा का ज्ञान आपको अमृतसर पंजाब में मिला है। पिछले 23 वर्षों से आप ज्ञान में हैं और 20 वर्षों से हेडक्वार्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अवतार भाई के साथ साइट सीइंग ऑफिस में पब्लिक रिलेशंस मीडिया की सेवाएं हैं और इसके साथ साथ रात्रि में जो क्लास होती है हमारे छोटे लाल भाई ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में वो कार्यभार आप संभालते हैं। और साथ साथ जो सुबह में अमृत वेले के बाद एक क्लास चलती है मधुबन निवासियों की आपस में, आपको पता है? हाँ, आप भी कभी जाया करो सुबह क्लास में। अमृत वेला पूरा करके 5:30 शुरू होती है,
5:15
बजे शुरू होती है। जो ओम शांति भवन में जाते हैं ना, तो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां पर, माना ऑफिस है, उसके बाजू में हॉल जिसको रिसेप्शन हॉल बोलते हैं, वहां पे आप जाना 5:15 बजे। आपको बहुत अच्छा मजा आएगा। और वो जो क्लास होती है वो सभी को मोबाइल पे भेजी जाती है। जब आप सुनेंगे ना तो आप भी अपना नंबर दे देंगे इनको, हमको भी भेजना क्लास। डॉक्टर सचिन भाई और बहुत इनका ग्रुप है, जिन जिन को भी पता होता है उस क्लास में जाते। यहाँ तक कि हमने ये सुना है कि कई भाई बहने जब शांतिवन से ऊपर आते हैं तो एक दिन रहने के लिए अकोमोडेशन जब मांगते हैं नहीं मिलता है तो क्या रिक्वेस्ट करते हैं, हम डॉक्टर सचिन को पर्सनली सुनने के लिए आए, प्लीज एक दिन की हमको छुट्टी दो रहने की। तो इतनी अच्छी क्लासेस होती है सुबह और सभी को सर्कुलेट करते हैं आप ही विशेष रूप से। तो बहुत अनुभवी रतन है, ज्ञान का चिंतन बहुत अच्छा चलता है आपका। तो आप सबके सम्मुख अपने अनुभव से आपको भी लाभान्वित करेंगे।
आज का काम कल पर मत छोड़ो।
आज की मुरली में जब बाबा ने कहा ना, आज का काम कल पर मत छोड़ो, तो इस विषय पर आप बताने जा रहे हैं आदरणीय सुशील भाई जी।
ओम शांति। आज बाबा ने कहा आज का काम कल पर मत छोड़ो, तो आज की मुरली में आज के कौन कौन से काम बताए? कौन कौन से? वो बाबा ने कहा अगर आज का काम कल पर छोड़ा तो क्या होगा? और धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए आज का काम कल पर मत छोड़ो, ये सार था। बीच में मुरली में भी था और लास्ट में भी था, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ की गति अगर कम होती है तो कहीं ना कहीं हम अपना डेली होमवर्क है उसको नेग्लेक्ट करते जाते हैं, उसको छोड़ते जाते हैं। और धीरे धीरे जब वृद्धि होता जाता है होमवर्क और नहीं होता है फिर टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर बहुत सारा होमवर्क इकट्ठा हो जाता है, हुआ है नहीं है, इतना समय ब्राह्मण जीवन में धीरे धीरे बीतता जाता है और वो काम होता नहीं है, फिर बढ़ जाता है, फिर देखते हैं तो हमारे तो हुआ ही नहीं है, फिर टेंशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और दिन प्रतिदिन मुरली तो नहीं थे नहीं, नहीं थे नहीं, एक मुरली पूरी नहीं फिर नेक्स्ट डे दूसरी आ जाएगी, किसी का क्लास आ जाएगा। तो जो भी हम डेली बाबा के महावाक्य हैं उस पर जितना भी यथाशक्ति जितना भी हम चिंतन कर सकें, उसको हम अप्लाई कर सकें, उसके लिए थोड़ा समय दे सकें, को खुद के ऊपर ही उसके लिए अटेंशन देने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जो समय है हम सब जानते हैं बहुत अमूल्य समय है, एक सेकंड जो निकल गया वो फिर अगले कल 5,000 बाद ही आएगा, और जो हम अभी इसमें नूंद रहे हैं वो ही नूंदा जाएगा। अगर अभी हमने इस समय को अगर अच्छी तरह सफल नहीं किया, इस समय 20 क्षण में दुख में रहे, अशांति में रहे, पर चिंतन में रहे, तो कलप कलप वही होता रहेगा। है तो ड्रामा में नूंद लेकिन वो लास्ट में पॉइंट, लेकिन सबसे पहले नूंद तो अभी हम नूंद रहे हैं, है ना। जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं ये कल्प कल्प के लिए नूंद रहे हैं, पीछे क्या क्या उस कल्प का तो हमको याद नहीं है ना, पिछले कल्प पता है हमको क्या किया था, लेकिन अभी हमको स्मृति है क्योंकि इस समय हम संगम के ऊपर टॉप पॉइंट पर खड़े हैं। इस समय हमें सारे कल्प की नॉलेज है, पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तो संगम का समय ऐसे ही निष्फल न चला जाए, जैसे भक्ति में मांगते रहे, जैसे आज भी भगवान ने कहा तुम हो सकेले देव भगत, है ना। तो ये जो समय है ये हम सभी बाबा से कुछ प्राप्त करने का समय है। ब्राह्मण जीवन सबसे ज्यादा सुख अनुभव करने का समय है। देवताएं भी इतनी सुखी नहीं है जितना ब्राह्मणों को सुख है, क्योंकि वहां से तो फिर उतरती कला ही है। अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी हम पिछली बातों को पकड़ के रखे हुए हैं, उनका ही चिंतन कर रहे हैं, तो फिर सुख का अनुभव करके कब करेंगे। अभी युद्ध के संस्कार हैं, तो फिर भविष्य में भी वैसे ही पद मिलेगा उसी तरीके से। भविष्य पद मिले ना मिले वो अलग बात है, वो बाद की बात है, लेकिन वर्तमान जो हम अतीन्द्र सुख का अनुभव करना चाहते हैं उससे वंचित रह जाएं। भगवान हमारे सामने बैठा है और वो सब कुछ लुटा रहा है, अपना सर्वस्व सौंप दिया है उसने हमारे ऊपर, वो खुद बलिहार जा रहा है हमारे ऊपर। उसके ऊपर हम अगर थोड़ा ध्यान नहीं दे, अटेंशन नहीं दे, तो फिर कैसे अच्छा लगेगा जीवन में, उमंग उत्साह कैसे आएगा, खुशी कैसे आएगी। तो ब्राह्मण जीवन में जितना भी हम सबको कार्य मिलते हैं, कोई ना कोई हमें जिम्मेवारी लेनी चाहिए, जवाबदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम जिम्मेवारी लेते हैं तो बहुत सारी चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं जो चीजें हमारे पुरुषार्थ में बाधक हैं। अगर जिम्मेवारी ले लेते हैं तो एक तो समय की पाबंदी हो जाती है, समय के लिए हम पाबंद हो जाते हैं, हमारा समय वेस्ट नहीं जाएगा। अगर हम जिम्मेवारी लेते हैं तो हमारा उस कर्तव्य के प्रति थोड़ा चिंतन चलेगा, उस कर्तव्य के प्रति हम थोड़ा समय देंगे, है ना। उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां अपनाएंगे, ज्ञान का मन चिंतन चलेगा, मन उस कार्य में हमारी बुद्धि इन्वॉल्व होगी क्योंकि हमने जिम्मेवारी ले ली है। जैसे घर में भी कोई कर्तव्य होते हैं तो जब तक उसको हम जिम्मेवारी पूर्वक नहीं निभाएं तो सफल नहीं होते हैं। तो बाबा ने हम सबके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, सबसे पहले तो स्वयं को परिवर्तन की जिम्मेवारी दी है, उसके बाद विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी। कब जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि विश्व का परिवर्तन हमारे से होगा। हम सभी जानते हैं जो हम सबकी बैकग्राउंड क्या है, कोई गांव से आया, कोई शहर से, कहीं से, उस लाइफ की तुलना इस लाइफ से करें तो कहां से कहां पहुंची। सपने में था कि भगवान हमको मिलेंगे, था कि इतना ये सुंदर ब्राह्मण परिवार मिलेगा, इतने पवित्र आत्माओं का आपस में मिलन होगा, इतनी पवित्र आत्माओं के साथ ज्ञान चर्चा होगी। तो बाबा ने जो हमारे में विशेषताओं की जो परख कर हमको नियुक्त किया है विश्व कल्याण के कर्तव्य में, उसको अगर हम जिम्मेवारी पूर्वक निभाएंगे तो बाबा का प्यार निरंतर अनुभव होता रहेगा। प्यार कोई मांगने की चीज नहीं है, है ना। प्रॉपर्टी किससे मांगने की चीज नहीं है, वो तो जो माँ बाप की प्रॉपर्टी वो तो बच्चों की है ही है, लेकिन यहाँ जो सूक्ष्म प्रॉपर्टी है जो हम बाबा से हम अनुभव करते हैं, बाबा के प्यार का अनुभव, सुख का अनुभव, तिंद्रे सुख का अनुभव, शांति का अनुभव, पवित्रता का अनुभव, शक्तियों का अनुभव, उसके साथ का अनुभव, तो जो उसने जिम्मेवारी दी है उसके अगर प्रति हम पूरा कर्तव्य प्रायणतापूर्वक निष्ठापूर्वक चलते रहेंगे तो उसके निरंतर साथ की हम अनुभूति कर सकते हैं। दूसरा, जिम्मेवारी को निभाने के लिए उसके हमें थोड़ा मेथड भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी जिम्मेवारी ले और उसको हम निभा ही नहीं सके। तो जितना हम ज्ञान में ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली हमारे रास्ते खुलते जाते हैं। कल का स्लोगन था ना एक, परसों का या कल का, ज्ञान की पराकाष्ठा के लिए क्या करो। हाँ, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त पुरुषार्थ। तो वास्तव में ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ कोई दिखावे का पुरुषार्थ नहीं है, ये तो हमारे मन में क्या चल रहा है, किसी को क्या दिखाई दे रहा है। ये तो बाबा ने कहा ना, आज गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ की गोथरी कौन है? ब्रह्मा बाबा। और हम क्या है फिर? शिव बाबा गुड़ हो गया, गुड़ की गोथरी। हम कौन है फिर? बोरी। तो बाबा जानते हैं, बच्चे जानते हैं, शिव बाबा जानते हैं हमारे मन में क्या क्या चल रहा है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा भी तब बढ़ेगी जब हमारा मुरली के ऊपर थोड़ा चिंतन चलेगा। आज भी था ना, पढ़ाई के ऊपर पूरा अटेंशन रखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसे सोर्स ऑफ इनकम भी कहा जाता है, क्योंकि मुरली में हर समस्या का समाधान है। अगर हमारा चिंतन नहीं चल रहा तो उसका भी समाधान है। कोई सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक समस्या है उसका भी समाधान है। कोई संबंधों में कड़वाहट है उसका भी समाधान है। तो मुरली एक ऐसी चीज है जिसमें हर समस्या का समाधान है। तो जो बाबा के कर्तव्यों की हमको जो जिम्मेवारी मिली है, सबका समाधान उसमें है। बाबा कहते हैं अगर वाचा सर्विस नहीं कर सकते तो मनसा करो, मनसा नहीं कर सकते तो कर्मणा करो, अगर कर्मणा भी नहीं कर सकते तो क्या करो? हाँ, वो मनसा में आ गया शुभ भावना, शुभ कामना, और क्या करो? अगर मान लो हमारे से पुरुषार्थ नहीं होता है तो भी क्या कर सकते हैं? हम दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरों की महिमा कर सकते हैं। आज बाबा ने हमारी महिमा क्या की? प्रश्नोत्तर में था ना कि तुम तो ज्ञान गंगा बन सकती हो। बाबा ने कहा जो बच्चे गिरे हुए हैं तो गिरे हुए बच्चों को कैसे उठाते बाबा? तुम तो ज्ञान गंगा बन सकती हो, तुम्हें मैं मुफ्त की विश्व की भाषाएं देने आया हूं, तुम तो विश्व का मालिक बन सकती हो, बाप का परिचय दे सकती हो। जब भी बाबा इस धरा पर आते हैं, जब भी हमको मुरली सुनाते हैं तो सबसे पहले हमारी महिमा करते हैं। जबकि मालूम है हमको हमारे में वो अभी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन है वो, क्योंकि वो भगवान को दिखाई दिए हैं। इसलिए क्योंकि वो लंबे समय से हमारे पुराने संस्कार जो है ना वो सामने हैं, उनके नीचे वो दब गए हैं। तो बाबा को हमारी विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, हमारे गुण दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमारे से पुरुषार्थ है तो दूसरों की कम से कम अप्रिशिएट तो करो, दूसरों को उनको तो आगे बढ़ाएं। बाबा ने कहा दूसरों को आगे बढ़ाना है, खुद आगे बढ़ना है। जैसे मम्मा बाबा क्या आगे बढ़ने का प्रयास किया कभी उन्होंने? वो तो हमेशा खुद अपने को पीछे रखते रहे, आगे बच्चों को बढ़ाते रहे, लेकिन आगे गया कौन? मम्मा बाबा आगे। अगर हमारे जो दिल से कहा शुभ भावना, शुभ कामना है अंदर से, क्योंकि सबके प्रति अपनत्व का भाव होना चाहिए। जब तक हमारा किसी के प्रति अपनत्व का भाव नहीं है, किसी को हम अपने परिवार का नहीं समझते हैं, तो आगे बढ़ाने का संकल्प नहीं आएगा। हम सभी एक ही परिवार के हैं, ये जैसे एक हाथ की उंगलियां हैं हम सभी। अब उंगलियों को काट के थोड़ा रख देंगे, अगर कोई छोटी उंगली है, किसी में कुछ चोट लगी है तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे ना, उसका हम कैसे काट देंगे? उसको इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे? उसमें नमक डालेंगे, क्या करेंगे? हल्दी डालेंगे, अच्छी दवाई लगाएंगे। तो ये हमारा ब्राह्मण परिवार है। बाबा कहते हैं किसी भी की भी कमी कमजोरियां नहीं देखो। कमी कमजोरियां अगर देखनी है तो पहले अपने अंदर की कमी कमजोरियां देखनी है। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ, अर्थात अपनी कमजोरियों का चिंतन करके उनको निकालना, ये भी एक तीव्र पुरुषार्थ है। दूसरे की कमी कमजोरियां तो जल्दी नजर आती हैं, लेकिन अपनी तरफ चार उंगलियां होती हैं उसकी नजर नहीं आती हैं। तो जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं उनको खत्म करने की हमारी मानसिकता होनी चाहिए, तो ही हम परिवार में आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों को अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, दूसरों के प्रति शुभ भावना रख सकते हैं। नहीं तो शुभ भावना रखना कोई साधारण काम नहीं है, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार हम आत्माओं के अंदर हैं। अनेक जन्मों में हम आत्माओं के साथ कई प्रकार के हिसाब किताब रहे हुए हैं। किसी ने हमको दुख भी दिया होगा तो वो संस्कार भी हमारे अंदर ही है, बदला लेने के संस्कार होंगे। किसी ने कटाक्ष किया होगा, किसी ने कोई उल्टे सुलटे ऐसे बोल बोल दिए होंगे जो हम बहुत दिल शिकस्त हो गए होंगे, हमारे संबंधों में कहीं ना कहीं दरार पैदा कर दी होगी। तो बहुत सारे संस्कार हैं जो हमने भी किसी से ऐसे किया होगा और हमारे से भी हुआ है, उसने भी किया हमारे से। तो अब भी जो हमको ये नॉलेज मिली है, ये एक इंजेक्शन की तरह काम करता है। बाबा माना ये नॉलेज है कि हमारी रगों में समाने के बाद जो हमारे कड़े से कड़े सूक्ष्म अति सूक्ष्म संस्कार है वो बाहर निकलने लगते हैं। इसलिए बाबा कहते पहले रियलाइजेशन कार्ड के मुरली में था ना दो शब्द कि तुम बच्चे तो भाषण करते हो लेकिन बाबा एक सेकंड में दो ही शब्द बताते हैं, कौन से? रियलाइजेशन और सॉल्यूशन, समाधान। रियलाइजेशन माना महसूसता, अपने कमी कमजोरी की महसूसता कि हमारे कौन से संकल्प चल रहे हैं, कौन से बोल हैं, कैसी दृष्टि है, कैसी वृत्ति है, कैसे हमारी व्यवहारिकता है, कैसे हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं। स्वयं के ऊपर अगर हम नजर रखेंगे तो बाबा के कर्तव्यों के प्रति हम निष्ठापूर्वक जो जिम्मेवारी हमको मिली है तो हम निभा सकेंगे। अगर स्वयं परिवर्तन किया नहीं और सीधा जिम्मेवारी निभाने में कूद गए तो कहीं ना कहीं डिसर्विस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि संगठन बहुत बड़ा है, स्वभाव संस्कार टकराएंगे आपस में, एक दो के स्वभाव संस्कार अच्छे नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले हमें स्वयं के ऊपर फोकस करना है, स्वयं को परिवर्तन की प्रक्रिया जो विधिपूर्वक होनी चाहिए वो हमें अटेंशन से स्वयं के ऊपर अप्लाई करनी है। तो स्वयं को बार बार देखना है, इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी ये जो लाइफ है प्रैक्टिकल आईना है, काल की मुरली में था ना, प्रैक्टिकल आईना है। वर्तमान में देखा जाता है, बाबा ने कहा अंत में ऐसी आत्माएं आएंगी जो जिनको सुनने कितनी शक्ति नहीं होगी, ना ज्ञान को ग्रहण करने कितनी शक्ति होगी, हमारा वो प्रैक्टिकल लाइफ देखेंगे कि हमारी व्यवहारिकता कैसी है। बाहर से तो हम अच्छे दिख रहे हैं लेकिन अंदर से अगर हमारे वो संस्कार परिवर्तन नहीं है, क्योंकि सामने वाले भी हमारे चेहरे को देखकर ही समझ जाते हैं कि किस मेंटेलिटी के हम हैं, क्या हमारे अंदर में वो सेवा भावना है, क्या हमारे मन के अंदर दूसरों के प्रति शुभ भावना शुभकामना है। तो सबसे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा स्वयं के ऊपर काम करना है, जितना हम स्वयं के ऊपर काम करेंगे स्वयं को बदलने के पुरुषार्थ में हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो दूसरों को पुरुषार्थ कराने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः होगा, है ना, स्वतः आकर्षित होंगे। कोई भी चीज है साफ सुथरी है तो उसके प्रति हर कोई आकर्षित होता है। तो हमारी स्वयं के प्रति सच्चाई सफाई, बाबा के प्रति सच्चाई सफाई, परिवार में सच्चाई सफाई, पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अंदर एक हो बाहर दूसरा हो, जिसे बाबा ने कहा खौफनाक, 1971 की मुरली में है, अगर हम अंदर एक हैं और बाहर कोई दूसरा कह रहे हैं तो जैसे वो खौफनाक है, माना मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसे। तो अंदर बाहर स्पष्टता बहुत जरूरी है, तो ही बाबा का प्यार निरंतर हमारे पर बरस सकता है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पुरुषार्थ में वो नवीनता, जो कि नवीनता के प्रति हमारी जो रुचि बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ती है। तो हमको जो बाबा की जिम्मेवारी मिली है उसको विधिपूर्वक निभाने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ाई के ऊपर अटेंशन देना है, क्योंकि इस ये एकमात्र ऐसी पढ़ाई है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान है। कैसे जिम्मेवारी निभानी है, चाहे हम लौकिक में रहते हैं या सेंटरों में रहते हैं या संबंध संपर्क में आते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में उनको दिखाई दे, क्योंकि अंत में भावने का संसार के सभी जो गद्दियां वो हिलेंगी और वो देख रहे हैं हम संसार की गद्दियां कैसे हिल रही हैं, तभी तो भगवान के प्रति आकर्षित होंगे ना। और अंत में भगवान किस में दिखाई देगा, बच्चों में दिखाई देगा, तभी तो भक्ति मार्ग में उसकी यादगार बनेगी ना। तो जितना हमारे संस्कार बाबा के संस्कारों से मिलते जाएंगे तो नेचुरली दूसरों को उसकी अनुभूति होती रहेगी। इसलिए अंत में बाबा ने कहा जो आदि में पाठ चला साक्षात्कार का वही अंत में चलेगा। तो कदम कदम पर हमें स्वयं के प्रति सावधानी रखने की जरूरत है। और ये वास्तव में पुरुषार्थ बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको हम धीरे धीरे थोड़ा प्रयास तो करना पड़ता है शुरू शुरू में ही, है ना। हमने देखा शुरू शुरू में दो चार साल अगर हमने दिनचर्या जो एक ईश्वरीय दिनचर्या है उसके ऊपर चलते हैं तो फिर एक ऐसी सामान्य शायद पुरुषार्थ हो जाता है कि उसमें मेहनत तो नहीं लगती है। फिर जैसे कोई भी काम करते हैं उसको काम करते करते ऐसी हैबिट हो जाती है कि फिर अंधेरे में भी ताले को हम खोल लेते हैं, वहां लाइट वाले नहीं हो, आदत पड़ गई ना। ऐसे ही पुरुषार्थ के मार्ग में, इस ब्राह्मण मार्ग में, तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में नियमित अगर हमारा अभ्यास है तो फिर मेहनत नहीं है इसमें, फिर चाहे जो ज्ञान योग है वो हमको पूरा रमणीकता से उसकी अनुभूति होगी, क्योंकि वो एक खेल हो गया है। जैसे कोई भी कठिन से कठिन भी कार्य है खेल बन जाता है किसी के लिए, क्योंकि उसकी वो आदत बन गई है। तो ज्ञान जितना कठिन लगता है इसका मतलब हम इसको अपना सही तरीके से अपना नहीं रहे हैं। तो इस पर सही तरीके से चलने के लिए कुछ तो हमको आदतें डालनी पड़ती हैं, जो भी हमारी सामान्य दिनचर्या सवेरे से लेकर रात्रि तक, जैसे सवेरे सबसे पहले अमृत वेले उठना। लेकिन अमृत वेले का भी जो सर्कल है, अमृत वेले का भी जो संबंध है पूरे दिन के साथ में, वो सारे दिन में हम क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमारा खान पान है, वो सारा हमारा दिनचर्या का आधार पूरे दिन का भी आधार है। जो अमृत वेले का आधार है पूरे दिन की दिनचर्या जो भी है हमारे कर्म की, वो ही संस्कारों के अंदर कॉल्डिंग हो रहा है और अमृत वेले वही संकल्प चलेंगे। इसलिए बाबा ने कहा स्वप्न का भी आधार साकार जीवन है। जो भी हम सारे दिन में कर्म कर रहे हैं वो ही हमारा अमृत वेला होता है, और अमृत वेला अगर हमारा हमें अच्छी तरह उसकी अनुभूति करनी है, उसके अतिंद्र सुख का अनुभव करना है, एकदम फ्रेश हो, थोड़ा अनुभव हो कि सच में कोई शक्ति भरी है, तो उसके लिए कुछ तो परहेज करना पड़ेगा। पहले से हमको उसकी दिनचर्या बनानी पड़ेगी अमृत वेले। क्या अमृत वेले अगर हम आधा घंटा भी बैठे, पौना घंटा बैठे, उससे भी पहले हमको एक है कि टाइम कॉन्शियस नहीं होना है कि आज मैं अमृत वेले 2 से 5 योग करूंगा। यह भी एक मन में संकल्प चल गया 2 बजे उठेंगे 5 बजे, तो कॉन्शियस रहेगी 5 कब बजते हैं, तो आधा तो टाइम कॉन्शियस ही हो गए हमारे। तो जो एक सामान्य दिनचर्या पहले 3:30 बजे उठने की है, अगर ज्यादा से ज्यादा हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा तो फिर उससे पहले भी उठ सकती है, क्योंकि एनर्जी बहुत चाहिए योग लगाने के लिए भी, कुछ साधारण काम के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, उसके लिए अंदर ज्ञान चाहिए, ज्ञान का चिंतन चाहिए, मन बुद्धि को चलाने की आदत चाहिए। तो पहले तो हमारी जो सामान्य दिनचर्या है अमृत वेले की, चाहे हम आधा घंटा बैठे या पौना घंटा बैठे, तो उस दिनचर्या उस पौने घंटे में हमको करना क्या है, पहले से वैसे संकल्प चाहिए। अगर अंदर में संकल्प नहीं है, वैसे बैठ गया आगे खाली बाबा के चित्र को देख रहे हैं, तो अनुभूति होगी कैसे? कुछ तो रूरवान करनी पड़ेगी ना। बाबा ने बताया रूरवान करने की विधि क्या है, बॉडी से डिटैच कैसे होना है, कौन से संकल्प करने हैं, कैसे मनसा सेवा करनी है, कैसे सकाश देना है, आत्माओं का आह्वान कैसे करना है, भक्तों को साक्षात्कार कैसे कराना है, दुखी रोगी अशांत आत्माओं को शांति कैसे अनुभूति करानी है। तो पहले से अगर हमारे मन बुद्धि में वो मटेरियल है तो उसका चिंतन चलेगा, तो आंखें हमारी खुली रहेंगी। नहीं तो सवेरे सवेरे आलस्य का प्रभाव, क्योंकि उठ के आए हैं नींद और नींद का त्याग किया है शरीर, तो नींद मांगेगा मांगेगा। लेकिन अमृत वेले जो हम संकल्प करते हैं, संकल्प की एनर्जी बॉडी को एक्टिव कर देगी, फिर नींद नहीं आएगी। अगर संकल्प की एनर्जी हमारी ऑफ हो गई है तो बॉडी भी वैसी हो जाएगी, बॉडी भी ऑफ होने लगेगी। इसलिए सवेरे जो हमारी मानसिक दिनचर्या है वो हमको सेट करके रखनी है कि अगर हम 15 मिनट भी बैठे हैं तो 15 मिनट हमें क्या करना है। सबसे जैसे पहले 5 मिनट है, तो 5 मिनट में जैसे बॉडी से डिटैच हूं, टोटल डिटैच, इस बॉडी से मैं आत्मा निकली और 5 मिनट सीधा परम धाम में, वहीं अपने मन बुद्धि को सीधा फोकस करना है कि जैसे 5 मिनट के लिए मैं आत्मा डिटैच होगी, और उसमें भी घड़ी में नहीं देखना 5 मिनट, से भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है, ज्यादा जो कोई बात नहीं है, कम नहीं होने चाहिए, है ना। तो माना अपने मन को ज्यादा से ज्यादा एकाग्र करने का प्रयास करना है, जैसे 5 मिनट में आत्मा इस बॉडी से, जैसे इन आंखों से देख रही हूं, इस बॉडी से मैं चमकता हुआ सितारा निकला, ये देह यही छोड़ी और मैं सितारा जगमगाता हुआ सितारा ऊपर की तरफ जा रही हूं। एक विजन क्रिएट करना साथ साथ में कि सचमुच मैं जा रही हूं, उसकी अनुभूति करनी है साथ में। ये बॉडी जैसे पांच मिनट के लिए मैं इस बॉडी से छुट्टी ले चुका हूं या ले चुकी हूं, तो जैसे आत्मा मैं गई सीधा परम धाम में, बाबा से अटैच होगी एकदम, बिल्कुल एकदम बाबा से जुड़ गई और बाबा की कंप्लीट पावर, उसकी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा जैसे फुल चार्ज होती जा रही हूं, मैं आत्मा जैसे संपूर्ण पवित्र होती जा रही हूं, संपूर्ण निर्विकारी बन गई हूं। जैसे बाबा शुद्ध निर्मल पवित्र है, मैं आत्मा भी वैसे हूं। जो बाबा की चमक है वो ही मुझ आत्मा की चमक है। मेरे और बाबा में जैसे कोई फर्क नहीं रहा एकदम, क्योंकि बाबा की सेवा करने के लिए मुझे फिर से यहां अवतरित होना है। तो जैसे बाबा ने कंप्लीट अपना सर्वस्व मुझ आत्मा में भर दिया है, तो 5 मिनट बाबा के साथ जैसे बॉडी से डिटैच, बिल्कुल डिटैच। अगर हम बॉडी से डिटैच है तो 5 मिनट बॉडी बिल्कुल हिलेगी नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे तो हम किनारा कर ही चुके हैं ना। जैसे हम कोई चीज छोड़ के आए हैं, अभी मान लीजिए ऑफिस छोड़ के आए, तो इसमें हमको बांग का संकल्प थोड़ा चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, तो 5 मिनट तो टोटल डिटैच है ना। ऐसे अगर हम बॉडी से डिटैच है तो हमको बाहर का कोई संकल्प नहीं आएगा, इस बॉडी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा, आसपास क्या हो रहा है वो ध्यान नहीं जाएगा, किसका मोबाइल बज रहा है, सुनाई देगा, लेकिन उसके ऊपर संकल्प नहीं चलेगा क्यों मोबाइल बज रहा है, किसी के प्रति कोई संकल्प नहीं चलेगा ये क्यों बाजू वाला नींद कर रहा है। हम तो इस बॉडी से जब छुट्टी ले चुके हैं, इस संसार से 5 मिनट के लिए छुट्टी ले चुके हैं, तो संकल्प का आएगा क्यों चलना चाहिए संकल्प। तो छोटे छोटे जो हमको गोल है, स्वयं की मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए स्वयं का स्वयं के ऊपर ही प्रयोग करना है। तो जैसे मैं 5 मिनट के लिए मैं आत्मा बाबा से कंबाइंड होकर फुल चार्ज होकर फिर इस तन में बाबा मुझे भेज रहे हैं, अब मैं आत्मा इस तन में आके बैठ गई हूं। फिर अगले 5 मिनट, अब मैं आत्मा स्थान से निकली और 5 मिनट के लिए मैं अभी फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो गई, जैसे मैं सूक्ष्म अवतरण में पहुंच गई और सूक्ष्म अवतरण में फिर बाप दादा जैसे सामने बैठे हैं और बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है और बाबा की कंप्लीट सर्व शक्तियां फुल लाइट एंड माइट सारी मुझ आत्मा में समाती जा रही है और मुझ आत्मा से मस्तक से अनंत शक्तियों की किरणें निकलकर समूचे ग्लोब पर जा रही है, प्रकृति के 5 तत्वों को पावन बना रही है। मुझ आंखों से बाबा ने कहा ना, ये आंखें अंत में तुम्हारी जैसे बड़े बड़े बल्ब दिखाई देंगे, ऐसी रोशनी दिखाई देगी, है ना। कल की जो मुरली थी संडे की, उसमें बाबा ने संदेश में जो संदेश दादी गुलजार जी के द्वारा, उसमें बहुत सुंदर बातें थी, 4 बातें। कौन सी 4 बातें थी? और वो 4 बातें लाइट के रूप में परिवर्तन की थी बाबा ने। कौन सी 4 बातें थी ना, वो 4 बातें 4 लाइट के रूप में फिर 4 कलर के रूप में परिवर्तन होगी, व्हाइट ब्लू, व्हाइट ग्रीन ब्लू और गोल्ड। तो व्हाइट कलर किसका था? शांति। और ब्लू हरा उमंग का था, ब्लू उत्साह का था, हमने आगे पीछे बोल दिया और लास्ट में गोल्ड सेवा का। तो देखो जो बाबा के शब्द हैं, बाबा ने उसको लाइट में परिवर्तन कर दिया। तो हमारा योग भी क्या है, योग दिखाई थोड़ा नहीं देता किसी को। अब बाबा से शक्ति लेकर कुछ दिखाई थोड़ी दे रही है, लाइट दिखाई थोड़ी दे रही है, सूक्ष्म है ना। तो बाबा ने स्थूल चीज को सूक्ष्म में परिवर्तन कर दिया। तो ऐसे ही हमको सूक्ष्म मतन में जो भी योग से संबंधित पॉइंट है उसको सूक्ष्म रूप से अनुभव करना है। जैसे आकाश दे रहे हैं, आकाश दिखाई थोड़ी नहीं देती है, लेकिन संकल्प एक ऐसी चीज है जो संकल्प पूरे एनवायरमेंट को प्रभावित करती है, आत्मा को प्रभावित करती है। और वो प्रभावित तब करेगा जब हम बॉडी कॉन्शियस से डिटैच है। अगर बॉडी कॉन्शियस में तो संकल्प प्रभावित नहीं करेगा, तो हमारी वो बॉडी से रिलेटेड ही संकल्प रहेगा, हमारी बॉडी को थोड़ा प्रभावित करेगा। लेकिन आत्माओं को प्रभावित करने के लिए हमें भी उस स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। इसलिए कल के वरदान में भी था ना, समृद्धि स्वरूप जो आत्मा है वो शक्तिशाली आत्मा है। समृद्धि कौन सी? स्वयं की समृद्धि। तो जिस समृद्धि हम स्थित होंगे उसी समृद्धि की अनुभूति सामने वाले को होगी। तो हमारी जो ओरिजिनल नेचर कौन सी है, जैसे हम परम धाम में देखें तो परम धाम में हम आत्मा कितना पवित्र थी, संपूर्ण पवित्र, वो हमारा संपूर्णता, संपूर्णता का जो स्वरूप है उसको हम विजुलाइज करें, अपने फरिश्ता रूप को विजुलाइज करें सूक्ष्म मतन में बैठ के। फिर सूक्ष्म मतन अगर से नीचे आते हैं तो एक और अभ्यास कर सकते हैं, अगर हम चलते फिरते तो चलते फिरते हम फरिश्ता चल रहे हैं, और सुंदर अभ्यास कर सकते हैं, जैसे मैं आत्मा अपने फरिश्ते रूपी देह को निकल इस देह से निकली हूं और अपने फरिश्ते रूपी देह के साथ जितने भी सेंटर हैं अपने सभी सेंटरों के संदले ऊपर जाके बैठ गई हूं और सभी ब्राह्मण आत्माओं के विघ्नों को समाप्त कर रहे हैं, साथ में बाबा अटैच है ना। तो बाबा हमारे ऊपर वरदानी हाथ बाबा के हैं, बाबा मुझ आत्मा के द्वारा संसार की सभी ब्राह्मण आत्माओं के विघ्नों को समाप्त कर रहे हैं, विघ्नों से मुक्त कर रहे हैं, निर्विघ्न बना रहे हैं सबके दुख। क्योंकि संसार से देखा जाए तो हम आत्माओं को जो ज्ञान मिला है, अगर ज्ञान की विस्मृति है तो दुख हमको ज्यादा होता है, संसार वालों को फिर उतना दुख नहीं होता क्योंकि उनको तो ज्ञान ही नहीं है। हमको तो ज्ञान है, ज्ञान होने के बाद भी अगर दुख हो रहा है तो वो कड़ा दुख होता है। तो हमको ये भी सेवा करनी है, जो भी हमारे ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं उनके भी दुख दर्द दूर रहें, उनके लिए भी थोड़ा योग करना है ना, योग करना जरूरी है उसके लिए, ताकि इसलिए बाबा ने 4-5 साल पहले बोला था ना, रोज अमृत वेले, अमृत वेले के बाद 5 मिनट 10 मिनट निकाल के अलग से टाइम निकाल के सभी सेंटरों को निर्विघ्न बनाओ, मनसा सेवा करो इसके लिए, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो सवेरे 5-7 मिनट ये भी कर सकते हैं कि सब आत्माओं के फिर सेंटरों में, फिर दूसरा जहां जहां हमारे बीक के भाई बहने हैं, तो वैसे नॉन बीक के भी अपने बीक और नॉन पूरा संसार ही अपना है, फिर भी प्राथमिकता बाबा तो स्किल दे भक्तों को देते हैं ना पहले, आज भक्त ना बच्चों को देते हैं। तो जो भी हमारे घरों में भाई बहने रहते हैं, कितनी समस्याएं होती हैं घरों में भी, है ना, आर्थिक पारिवारिक सामाजिक समस्याएं, संबंधों की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि घर में रहते वास्तव में कई बार इतना टाइम नहीं मिल पाता है ना। यहां तो जो टाइम है सुनाने में तो आसान लगता है, लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र जाते तो पता चलता है, क्योंकि हम भी तो रहे हुए ना पहले, पता चलता है। लेकिन एक बात देखी है हमने, अगर बाबा से हमारी सच्चाई सफाई है तो यहां से ज्यादा अनुभूति हमको घर में होती थी, यहां भी होती है, लेकिन यहां मेहनत करनी पड़ती है, अटेंशन रखना पड़ता है, और वहां अगर हम थोड़ा पुरुषार्थ करते थे तो ज्यादा अनुभूति होती थी, यहां ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं थोड़ी अनुभूति होती है, ये तो एनवायरमेंट ही ऐसा है। लेकिन वहां अशांत वायुमंडल में रहकर शांति का अनुभव करना, अपने चित्त को शांत रखना कितनी बड़ी बात है, वो बाबा का कमाल ही होता है। हम सब ब्राह्मणों ने शुरुआत में सबने अनुभव किया होगा, जब हम ब्राह्मण बने, ब्राह्मण जीवन में कदम रखा, बाबा ने हमको अपना बनाया, तो उस समय हमको योग लगाना तो पता थोड़ा नहीं होता है, उसमें बाबा की कितनी हेल्प होती है, ज्ञान की एबीसीडी भी पता नहीं होता है, घर परिवार से कितनी समस्याएं आती हैं, तो उनको पार करने की क्षमता कहां से आती है, तो बाबा भरता है। लेकिन अगर हमारी सच्चाई सफाई है तो 10 मिनट के पुरुषार्थ में भी हमको जैसे एक घंटे की अनुभूति होती थी, तो वहां तो बाबा की बहुत मदद मिलती है। लेकिन थोड़ा सच्चाई सफाई चाहिए, हमारी धारणाएं हैं, जो मर्यादाएं हैं उनके ऊपर अटेंशन रखेंगे तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, जैसे जैसे हम इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं तो हम बहुत बड़े परिवार से जुड़ जाते हैं। फिर होता क्या, अगर हमने अपनी कमी कमजोरियों को नहीं त्यागा है, नहीं छोड़ा है, तो दूसरे की कमी कमजोरियां दिखाई देने लग पड़ती हैं, और फिर उन्हीं का मन में चिंतन चलता है, वर्णन करते हैं, तो हम स्वयं ही जैसे यज्ञ के लिए विघ्न बन जाते हैं। तो पहले तो हमको अवगुणी दृष्टि देखने की आंख जो है वो बंद रखनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा ने हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। अब ज्ञान के नेत्र से क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये हम सबको समझे। बाबा ने कहा है कि सभी के गुण देखो, विशेषताएं देखो, पता है अवगुण दिखाई तो देंगे लेकिन उनको चित्त पर नहीं रखो। अगर अवगुण दिखाई दे रहे हैं तो बाबा कहते दूसरे के अवगुण को भी अपना अवगुण समझो, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है जिस कमजोरी के कारण दूसरे के अवगुण खत्म नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं, उनके मन में भी अवगुणों को खत्म करने की शक्ति नहीं आ रही है, जरूर हमारे संकल्पों में कमी है, हमारे संकल्प शक्तिशाली नहीं है। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण, ताकि इतने हमारे संकल्प शक्तिशाली हो जाएं, जिन संकल्पों से दूसरों के संकल्प भी जो कमजोर संकल्प हैं वो समाप्त होते जाएं। कई बार होता है अगर सामने वाले में कमी दिखाई दे रही है, डिसर्विस कोई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको साक्षी भाव भी बहुत रखना जरूरी है, क्योंकि सभी एक जैसे तो हो नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, अगर हमारा साक्षी भाव नहीं है तो फिर हम पर चिंतन, पर दर्शन, पर निंदा, वर्णन करना कमी कमजोरियों का, उस एटमोस्फेयर को खराब करना। तो साक्षी अवस्था बहुत जरूरी है, जैसे बाबा ऊपर से साक्षी होकर देख रहा है। क्या बाबा ने एक सेकंड में कुछ भी कर सकता है, बदल सकता ना, लेकिन क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि सबके कर्मों का हिसाब किताब अपना अपना है। तो कैसे हम परिवर्तन, जब कोई बाबा के कहने से नहीं परिवर्तन हो रहा है तो हमारे कहने से कैसे परिवर्तन होगा। तो कुछ ऐसी चीजें हमको स्वीकार कर लेनी है, अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसको छोड़ देने का, लेकिन हमारे व्यवहार में फर्क नहीं आना चाहिए। जैसे एक दो तीन दिन पहले स्लोगन था, तुम्हारे विचार और स्वभाव में परिवर्तन भले हो लेकिन स्नेह में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यही था ना। हाँ, तुम्हारे स्वभाव और विचारों में अंतर भले हो लेकिन स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते संसार में पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करो, क्योंकि है तो भी हमारे परिवार की है ना, ऊपर तो हम सभी एक ही है ना। तो स्नेह में हमारा अंतर नहीं पड़ जाए, अगर दूसरे में अवगुण दिखाई भी दे रहे हैं या हमारी कोई गिला नहीं कर रहा है या हमारे बारे में कोई उल्टा सुलटा ऐसा वातावरण बना रहा है, लेकिन हमारे स्नेह में कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कहीं अगर हमारा खुद ही आपस में किसी से टकराव हो जाता है तो उसमें हमको स्वयं ही नम्रतापूर्वक झुक जाने का है, भले हमारी गलती नहीं भी है, क्योंकि उस समय अगर हम झुक जाते हैं तो हमारा पुरुषार्थ निर्विघ्न चलेगा। अगर हम झुकते नहीं है, स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पुरुषार्थ में खुद ही विघ्न बन जाएगा, तो वह संकल्प चलेंगे, बार बार वही संकल्प चलेंगे, फिर योग में बैठते उसमें भी वही सारा टाइम उसे भी बीत जाएगा, तो फिर सुख कब ले पाएंगे। इसलिए दूसरे की कमी कमजोरियों को देखने का बाबा ने कहा नेत्र बंद करो। जो बाबा ने हमारा नेत्र खोला, ज्ञान का नेत्र सदा खुला रखो, ताकि उस ज्ञान के नेत्र से हम दूसरों को सुख दे सकें, स्वयं भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकें। तो साक्षी दृष्टा, दूसरा समय कौन सा चल रहा है, ये कितना अमूल्य समय है, एक एक सेकंड। अभी हमें भरोसा तो नहीं है कि अगला श्वास कब निकल जाएगा, कितना कीमती लाइफ है ये, एक एक संकल्प कितना वैल्यूएबल है, एक एक सेकंड कितना वैल्यूएबल है। बाबा ने कहा एक सेकंड गया तो समझो एक जन्म चला गया, तो 84 सेकंड गए तो 84 जन्म चले गए, क्या कहेंगे। बाबा ने तो कहा एक सेकंड अगर खराब गया आपका तो एक जन्म चला गया, तो 84 सेकंड खराब हो गए तो 84 जन्म गए। बाबा का कहने का अर्थ है कि समय की वैल्यू समझो, है ना। जन्म तो होंगे 84 होंगे, जो भी ब्राह्मण होंगे 84 जन्म तो जरूर होंगे, लेकिन समय का महत्व समझ के कि कितना ऊंचा हमारा पद है, विश्व की बागडोर भगवान हमारे हाथों में सौंपने के लिए आया हुआ है, तो हमारा कदम कदम पर कितना अटेंशन, समय कैसे बीतना चाहिए। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि संसार में जो VIP लोग होते हैं उनका क्या होता है, मिनट टाइम टू टाइम, उनका मिनट टू मिनट टाइम होता है, सेटिंग होती है दिनचर्या की, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस समय भोजन करना है, कहाँ पहुंचना है, कितना समय बोलना है, भाषण करना है, कितना समय उनको रास्ते में जाना है, कितनी व्यवस्थाएं होती है उनकी। और हम कितने VIP हैं, 2 संडे पहले मुरली में बाबा ने कहा था ना, जितने मर्जी VIP लगा दो उतने आप हो। तो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, अर्थात जिस सोमान में बाबा हमको देखते हैं उस सोमान में हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, अर्थात हमने अभी भी अपने अंदर हीन भावनाएं भर के रखी हुई हैं कि पुरुषार्थ तो मेरे से होता नहीं है, बाबा मुझे कहते हैं तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, वो अनुभव तो होता नहीं है, तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो लगता तो है नहीं है, तुम मेरे नैनों के नूर हो, कहां कहते चेहरे से तो नजर ही नहीं आता, नूर है कहां दिखाई नहीं दे रहा है, हम स्वीकार ही नहीं करते हैं उसको। अरे भगवान कह रहा ना तो हैं हम, लेकिन उसकी अनुभूति तब होगी जो पहले उसके पीछे का रहस्य समझना पड़ेगा। जैसे बाबा ने कहा तुम बच्चे विश्व कल्याणकारी हो, अब ये स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसके पीछे जो समाई है सारी चीजें, उसके पीछे जो विस्तार समाया हुआ है उसमें हमको थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। अगर बाबा ने कहा तुम विश्व कल्याणकारी हो तो अब विश्व कल्याणकारी किसे कहते हैं, विश्व कल्याणकारी की परिभाषा क्या है, उसके लक्षण क्या होंगे, उसके कर्तव्य क्या होंगे, उसके नयन चयन बोल कैसे होंगे, थोड़ा चिंतन तो करना पड़ेगा ना, कि खाली विश्व कल्याणकारी लगा लिया कि मैं डॉक्टर हूं और इंजेक्शन लगाने नहीं आते तो थोड़ा उसके ऊपर चिंतन तो करना पड़ेगा ना। तो विश्व कल्याणकारी हमारे मन के संकल्प, बाबा ने इसलिए कहते ना मन जीते जगत जीत, माना मन हमें अपना चलाने, मन को चलाने की कला आ गई ना तो समझो तो सारी कलाएं आ गई, जो 16 कलाएं कहते हैं ना, अपने मन को चलाने की कला आ गई तो बाकी सब कलाएं अपने आप ही आ जाएंगी। किस समय क्या सोचना है वही हमारी बुद्धि सोचे, क्या बोलना है वही हमारा मुख बोले, क्या देखना है वही हमारी आंखें देखे, ऐसे नहीं कि दूसरा नहीं दिखाई, दिखाई तो देगा, लेकिन उसके ऊपर चिंतन नहीं चले हमारा। जैसे अगर हम रास्ते में जाते हैं तो कूड़ा करकट तो दिखाई देगा, बदबू तो आएगी, ऐसा तो नहीं कि दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम चिंतन थोड़ा करेंगे, वहां उसकी दुर्गंध थोड़ा सूंघने लगेंगे, लगेंगे सूंघने, छोड़ देंगे ना, उनको इग्नोर कर देंगे, चले जाएंगे हम, हाँ कहीं अच्छा साइड सीन आता तो वहां रुकेंगे। तो ऐसे जो ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट हैं उसके ऊपर हमारा मन बुद्धि एकाग्र हो, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करें, बाबा ने आज वरदान में क्या कहा, स्लोगन में क्या कहा, क्या क्वेश्चन आंसर था, कौन सा आज नया पॉइंट था जो हमको करना चाहिए, जो आज बाबा ने करना है, जो काम उसे आज अभी कर डालो। आज तो बाबा ने कहा आज का काम कल पर मत छोड़ो, लेकिन ये 4th क्लास में हमको पोईम होती थी, आज का काम कल नहीं करना है, जो काम उसे आज अभी कर डालो, और हमको याद नहीं होता था और हमें पिताजी से बहुत मार पड़ती थी ये। आज करना है जो काम उसे आज अभी कर डालो, बाकी पोईम तो भूल गई, लाइन नहीं कभी भूली। तो जो भी हमारे स्थूल लौकिक अलौकिक जो भी कर्तव्य होते हैं अगर हम उनको समय पर पूरा करते हैं तो बहुत प्रकार से टेंशन से मुक्त रहते हैं। मान लो आज हमको किसी ने कुछ सेवा दी है, अगर हमारे पास टाइम भी है और हमारे में उस सेवा को करने की क्षमता भी बाबा ने भरी है और उस सेवा को हम कर सकते हैं, और अब वो हमने दिन में नहीं की सेवा, हम किसी दूसरे काम में लगे, जबकि सेवा को हम कर सकते थे और वो नहीं की, तो जैसे हम शाम को योग में बैठेंगे ना, वो ही घूमेगा सारा। एक तो खुद के संकल्प चलेंगे, दूसरा जिस आत्मा ने हमको सेवा दी उसके संकल्प भी हमें प्रभावित करेंगे, उस आत्मा का हमारे प्रति विश्वास उठ जाएगा कि हमने सेवा दी, सेवा तो की नहीं है, जिम्मेवारी पूर्वक तो निभाई नहीं है। तो बाबा हमको रोज इतनी सेवा देके जाते हैं, स्वयं को बदलने की या कोई भी यज्ञ की सेवा है, उसको अगर हम थोड़ा भी निग्लेक्ट करते हैं तो फिर हमारे योग में वो बाधा पड़ती है। यज्ञ की हमको कोई भी सेवा मिले, छोटी से छोटी, सबसे पहली बात है सेवा छोटी समझनी नहीं है। हमें याद है जब से हम पहले दिन में सेंटर में आए थे तो हालांकि अभी कोर्स भी अच्छी तरह से नहीं हुआ था, थोड़ा सा किया था, लेकिन बोला ना कि बोलने से ज्यादा हम देखने से समझते हैं, तो हमने सब लोगों को देख के तो समझ गया कुछ तो है इधर। तो पहले दिन में हम तो रंगीन कपड़ों में आए थे अभी तो, और पहले दिन में हम स्नान पानी भी नहीं करके आए थे क्योंकि थोड़ा नया नया लेके आ गए थे हमको भाई। तो पहले दिन हमको बहन जी ने कहा, पुरानी बहन जी थी, कि आपको कपड़े धुलाई करने हैं, करोगे आप? हम बोला करेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया। वो तो जो हां करते हैं ना, वो हां में बहुत बल मिलता है, और वहां से हम इतना निर्विघ्न हो गए कि जो लौकिक में जो सर्विस करते थे, तो वहां हम पहले सवेरे 9 बजे जाते थे, फिर धीरे धीरे सेवा में ऐसे सेवा के बंधन में बंध गए कि 9 के बजाय 12 बजे जाने लगे। और वहां जैसे जैसे हम लेट होते गए ना, वैसे वैसे हमारी पगार बढ़ती गई वहां। नहीं तो 2-4 दिन तो कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, लेट आ रहे हो, नहीं तो कोई पगार काटेगा, हमारी पेमेंट काटेगा। लेकिन जैसे जैसे हम ईश्वरीय सेवाओं में के बंधन में अपने को बांध लेते हैं, तो संसार के दूसरे बंधन स्वतः टूट जाते हैं, क्योंकि हमने किसके बंधन में बांधा अपने को? बाबा के बंधन में बांधा, उसकी सेवा के लिए रुके हैं हम, अपने स्वार्थ की सेवा के लिए नहीं है। उसकी सेवा माने पूरे परिवार की सेवा है, जो वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं। तो जितना हम ईश्वरीय बंधन में बांधते हैं, सेवाओं को जिम्मेवारी पूर्वक निभाते हैं, उतना हमारे ऊपर बाबा का विश्वास, यज्ञ का विश्वास, जो निमित्त आत्मा है उनका विश्वास, और इस विश्वास से जो दुआएं मिलती हैं, वो दुआएं हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का सहायक साधन बन जाती हैं। पुरुषार्थ में फिर मेहनत नहीं लगती है, फिर बैठे तुरंत बॉडी से डिटैच। इसलिए बाबा ने कहा अचानक एवरेडी और बहुत समय का अभ्यास। तो बहुत लंबे समय का अभ्यास अगर हमारा है, जो भी छोटे छोटे बाबा हमको गोल देते हैं, ये जो ट्रैफिक कंट्रोल बने हैं, या बीच में जब भी मौका मिले 1 सेकंड में बॉडी से डेथ, हमें छोटे छोटे गोल करने चाहिए सारे दिन में। जैसे मान लो आज हमको 10 बार इस बॉडी से डिटैच होना है, लंबे समय से नहीं, 1 सेकंड में निकले और बाबा से टच किया फिर वापस आ गए, बस इतना है। जो अगर हम लंबा टारगेट रखते हैं ना, तो लंबे टारगेट में मन बुद्धि कंट्रोल होता नहीं है, और फिर बाद में डिसहार्टेड हो जाते हैं कि मैं इतना टारगेट तो रखा, ये तो हुआ ही नहीं, अचीव तो हुआ ही नहीं इसको लिए, फिर दृष्टिग्रस्त हो जाते हैं। तो छोटे छोटे गोल रखेंगे तो 1-1 सेकंड करके कितने सेकंड हो जाएंगे फिर? अच्छा अब ये आदत पड़ जाएगी ना, फिर ये आदत कभी भी काम करेगी। फिर अंधेरे में बताया ना, कोई भी काम करना फिर अंधेरे में कर लेते हैं, फिर रास्ते में जाना अंधेरे में चले जाएंगे, क्योंकि एक बार उस रास्ते पर हम चलना शुरू कर दिया तो अभ्यास हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो नीचे देखता थोड़ा नहीं कोई, देखता कोई, उंगलियों को पता हो जाता है ABCD इधर है क्या, इधर है, उंगलियों कहां से पता गया, जबकि इधर भी नहीं पता होता। अगर हमको पूछे कीबोर्ड में क्या कौन सा अक्षर, तो नहीं मालूम है अभी, उंगलियों को ऐसी प्रैक्टिस होगी अभी। तो ऐसे अगर हम अभ्यास करते हैं तो ये अभ्यास हमारे पुरुषार्थ को बहुत सरल बना देता है, रोचक बना देता है, और रोचक जहां रुचि होती है, एक नए तरीके से क्रिएटिव होता है, तो फिर वहां आत्मा को उमंग सा मिलता है, उड़ने के पंख लगे जाते हैं, ज्ञान योग के पंख आज था ना, ज्ञान योग के पंख, या ज्ञान में विघ्न पड़ते योग में विघ्न, आज ये था ना, किसमें विघ्न पड़ते, योग में या ज्ञान में? दोनों में पड़ते हैं, ज्ञान बुद्धि में ठहरता पूरा वो भी तो विघ्न ही है तो विघ्न तो विघ्न है ही है, लेकिन समय समय अनुसार बाबा हम सब सामने वालों को देख के कहते हैं। तो विघ्न तो वास्तव में हम खुद ही क्रिएट करते हैं, हमारी कमजोरियां ही हमारी विघ्न है। बाबा ने हमको जन्मते ही वरदान दे दिया, पवित्र भवन बनो, योगी भवनो, तो स्टार्टिंग में वरदान देते तो वरदान तभी काम करेगा जब हम उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसके लिए थोड़ा समय देंगे, उसके जैसा बनने का प्रयास करेंगे, तब तो हमारा पुरुषार्थ का रस मिलेगा ना उसमें, है ना। रस की बात भी थी ना आज के मुरली में, कहां थी आज की मुरली में रस शब्द आया था, कहां आया था बताओ? हाँ, क्या स्लोगन था? माना देखो हमको अगर हम कोई शब्द लेते तो वो शब्द तुरंत लिंक होना चाहिए उसके साथ कि कहाँ था है, आज के मूल्य मेरा शब्द था। हाँ, और आगे उसके आगे देख लो डायरी में लिखा आप देख रहे हो। अंत में किसी और की याद नहीं आए, किसी और की याद नहीं आए, है ना। तो बाबा से सर्व संबंधों का रस, अब सर्व संबंधों से बाबा का रस कैसे मिलेगा, बाबा से सर्व संबंध कैसे मिलेगा। अच्छा, बाबा को अगर मम्मी के याद रूप में याद करने तो कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे, वो मेरे बाबा मम्मी ऐसे कैसे बोलेंगे, हैं? खाना खाने जाएंगे तो मम्मी है, कमा के तो पिताजी लाते हैं। तो बड़ा सिंपल है, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करने के लिए लौकिक मां को सामने रख लेना है। लौकिक मां हमको जो पालना देती है उसको अलौकिक में परिवर्तन कर देना। जैसे लौकिक में माता जी क्या करते हैं, पहले सवेरे उठाएंगे, है ना, फिर नहलाएंगे धुलाएंगे, फिर खाना परोसेंगे, हमको खिलाएंगे, फिर स्कूल तैयार करेंगे, अच्छी तरह से ड्रेस पहनाएंगे, फिर स्कूल में भेजेंगे, है ना। तो अब ये अलौकिक मां क्या करती है, सवेरे सवेरे हमको उठाती है 3:30 बजे, है ना, अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडले जागो। तो हम आत्माएं उस माता की बच्चे हैं या बच्चियां हैं, तो हम आत्मा जागृत होगी। अब उठने के बाद क्या करती है माता जी, फिर क्या करती है, स्नान पानी कराती है, तुमको फिर ज्ञान स्नान कराती है ना, योग भी, योग से हमारे विकर्मों को भस्म करती है, साफ सुथरा करती है, साबुन लगाते हैं ना, तो योग से क्या होती है, आत्मा साफ होती है। तो जैसे मैं आत्मा अपने मम्मी के पास गई हूँ, अपनी माता जी के पास गई हूँ, तो बाबा मुझे जैसे योग अग्नि से, जैसे बाबा मुझे कौन सा, बाबा ने कहा लक्ष्य सोप, है ना, तो बाबा जैसे मुझे, मुझे आत्मा को साफ कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं, नीट क्लीन पवित्र बना रहे, एकदम आत्मा जैसे चमक रही है, एकदम चमकीली होगी, चकमक होगी जैसे। और फिर मैं आत्मा आ गई इस तन में, अब इस तन में आके फिर मुरली सुनने गए, जैसे माता जी ने हमको स्कूल में भेज दिया तो स्कूल में मुरली सुनी। अच्छा, स्कूल में गए तो टीचर का संबंध तो अपने आप ही जुड़ जाता है, वहां तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, है ना, सामने कोई भी टीचर बहने या भाई कोई भी पढ़ा रहा है मुरली, तो बाबा जैसे पढ़ा रहा है, हमारे पढ़ाने, हमें पढ़ाने के लिए आया हुआ है, तो बाबा के साथ टीचर का संबंध अनुभव कर सकते हैं। फिर बाबा भोजन, मम्मी भोजन कराती है, तो यहाँ कौन सा भोजन है, ज्ञान भोजन, हाँ, ज्ञान का भोजन, तो ज्ञान की खुराक हमको बाबा खिला रहे हैं। तो भोजन भी हम कितना खाते हैं, पूरा दिन खाते थोड़ा रहते हैं, कितना खाते हैं, थोड़ा खाएंगे ना, लिमिट का। अब 4 पेज की मुरली है, अब 4 पेज की मुरली याद रहती है, तो उससे कितना खाएंगे हम, 4 पेज की मुरली से 10 लाइनें याद कर लेनी की, कि 10 गिट्टियां हमको मम्मी ने खिला दी है। कौन कौन सी गिट्टियां होंगी, जैसे आज की मुरली में से 10 पॉइंट निकाल लेते हैं, कौन कौन से 10 पॉइंट होंगे, जो सारे दिन वो काम करते रहे, खुराक बनकर हमें शक्तिशाली बनाते रहे, तो कौन से पॉइंट होंगे वो 10। आज बुद्धि को चलाना पड़ेगा ना कुछ तो कुछ, तो कौन कौन से पॉइंट हैं, आज बाबा ने मुरली में क्या क्या कहा, हमने भी पढ़ा नहीं, वही सुनी थी, उसके बाद नहीं पढ़ी अभी, आप हम सब इकट्ठे करेंगे, तो कौन कौन से पॉइंट बाबा ने कहा। एक तो ये कर दिया कि आज का काम कल मत पर छोड़ो, कल पर मत छोड़ो, नहीं तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, हाँ, ज्ञान की धारणा तब होगी जब योग लगेगा, इसलिए ज्यादा जितना हो सके योग में रहो, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है बाबा का पढ़ाना है, हाँ ये पढ़ाई ही वरदान है, बाबा का पढ़ाना ही वरदान है, ये भी था, 3 पॉइंट हो गए। चाहता है मम्मा बाबा को फॉलो करना है, ये था आज के मूल्य में, चलो नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, 4 हो गए, चलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये भी है, देख से देख के सर्व संबंधों, कुछ एक पॉइंट होते जो कॉमन होते हैं, है ना, ये लगभग कई मुरलियों में आते हैं, हमें थोड़ा उनसे हटके लेने हैं, ये तो हमको जैसे देह से देह के संबंधों, सब संबंधों को भूल मुझे याद करो, तुम्हें पवित्र रहना है, तुम्हें योग भी करना है, ये सब कॉमन पॉइंट कुछ हो जाते हैं, तुम आत्मा हो, घर से आए थे, घर को वापस जाना है, उससे कुछ अलग हटके पॉइंट, जैसे बाबा ने कहा तुम बच्चों की बाप महिमा करते हैं, उस महिमा में कितने पॉइंट थे आज, तुम ज्ञान गंगाएं हो, तुम्हें मैं विश्व का मालिक बनाता हूं, मुफ्त में विश्व की भाषा देने के लिए आया हूं, है ना, तो ये नई नई चीजें हैं एकदम। और क्या था नया, और बाबा ने हैं बाप को, हाँ बाप के ऊपर पूरा पूरा बलि चढ़ना, ये था एक। और बाबा ने एग्जाम्पल मेथड, जैसे बाबा ने दो व्यक्तियों का नाम लिया था, किसका? किसका नाम लिया था? उस व्यक्ति के साथ दूसरे का नाम जुड़ा था। हाँ मोती नेहरू जी। तो एग्जाम्पल, ये भी नई चीज है ना। तो बाबा ने कैसे जोड़ा है? तो हम मुरली को नए नए तरीके से याद सकते हैं, जैसे बाबा एग्जाम्पल मेथड है, जैसे बाबा ने मुरली में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए, वो हो गया। फिर क्वेश्चन मेथड निकाल सकते हैं, उस मुरली से चार पांच क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन मेथड हो गया, एग्जाम्पल मेथड हो गया, कंट्रास्ट मेथड, तुलना करते हैं, भक्ति में तुम क्या करते थे अब तुम क्या करते हो, ये हो गया कंट्रास्ट मेथड हो गया। तो अलग अलग मेथड से हम मुरली को याद कर सकते हैं। तो अभी भी पांच छह पॉइंट ही हुए, अभी चार बाकी भी है अभी। और बताओ है, योग में विघ्न डालती है। हाँ माया ज्ञान में नहीं, योग में विघ्न डालती है, खुद माया पर। हाँ गंधर्व विवाह की बात है, उसमें बाबा ने कहा मुट्ठे अपने आप ही प्रोग्राम बना लेते तुम। बाबा देव कितने रमणीक है। मरे घरेलू बैठा हुआ, घरेलू नहीं तो हम बाहर का व्यक्ति से बात करेगा कोई, तो बाबा ने कितने घरेलू बात किया कि तुम अपने आप ही प्रोग्राम बना लेते हो, माँ बाप को बताते ही नहीं हो। एक ही पॉइंट हो गया, आठ हो गए, दो और हाँ जी क्या बनाया? हाँ सिकिलदेव भक्त बताया, हाँ तुम सिकिलदेव भक्त हो। और हाँ सभी आत्मे पूरा भक्ति नहीं करेंगी, जो जास्ती भक्ति करेंगी वो ही आएंगी इधर। और बुद्धि को चलाना ऐसे ही, मुरली पढ़ ली, अगर योग नहीं लगता तो योग में बैठ के हमको चिंतन करना है, क्योंकि एक खाली सूखा योग नहीं, ज्ञानमय योग है ये। अगर हम योग में बैठे बैठे चिंतन भी कर रहे हैं ज्ञान का, तो ज्ञान किसका ये? और ये ज्ञान ऐसा जो हमको इस बॉडी से भी डिटैच करता है, जैसे हम इसमें जो चर्चा कर रहे हैं, तो इस चर्चा के इसमें भी हमारा अपनी बॉडी की तरफ बहुत कम ध्यान है, माना सभी की अपनी अपनी बॉडी की तरफ बहुत कम ध्यान है, क्योंकि ज्ञान सुनते सुनते किसकी तरफ ध्यान जा रहा है। इसलिए योग की भी अलग अलग स्टेज है, मनन चिंतन है। तो जितना जितना ज्ञान को मनन चिंतन करते जाएंगे तो योग हमारा स्वतः लगता जाएगा, तो फिर सुस्ती नहीं आएगी। तो इसके लिए ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा है तो मनन चिंतन है तो योग हमारा सहज हो जाएगा, अशरीरी बनना हो जाएगा, एक सेकंड में कहां भी पहुंच सकते हैं, जो भी बाबा ने हमको जिम्मेवारियां दी हैं। लेकिन क्योंकि बाबा ने कहा अंत में तो दुखों के पहाड़ गिरेंगे, आज भी था ना मुरली में, अंत में तो अभी परिस्थितियां ऐसे आने वाली जो मन चित्त में भी नहीं सोचा होगा। बाबा ने कहा अंत में पांचों तत्व प्रकृति के पांचों विकार बाहर करेंगे इकट्ठे, और उससे भी जो सबसे जो कड़ा पेपर है वो कौन सा है? चलो पांचों विकारों पर भी जीत पाली, पांचों तत्वों से भी पाली, और कौन सा है अभी सोचो, चलो दो मिनट बाबा की याद। तो कौन सा पेपर आएगा? पांच तत्वों का प्रकृति के और पांच विकारों का, और उसके अलावा जो सबसे खतरनाक है, हाँ खुद के संस्कार, सबसे कड़ा पेपर खुद के संस्कारों का आएगा। इसलिए भी संस्कारों को बहुत मोल्ड कर लेना, निर्माण कर लेना। संस्कार हमारे जैसे जैसे पुराने किसी जन्म के होंगे, इस जन्म के जैसे है ही नहीं है, खत्म हो, जैसे संस्कारों की जैसे मृत्यु हो गई है, ऐसे हमको संस्कार श्रेष्ठ बनाने हैं। इसलिए लंबे समय का अभ्यास है ये, और संस्कार बिना साधना के परिवर्तन नहीं होते हैं। ज्ञान और योग और सेवा में जितना हमारी हड्डियां लगेंगी, उसके बिना हमारे संस्कारों का परिवर्तन, संगठन में रह के ही हमारे संस्कारों का पता चलता है। किसी ने थोड़ा सा कह दिया रूठ के, वो दिन था ना बाबा ने कहा भले परिवार से रूठो लेकिन शिव बाबा से नहीं रूठो। इसलिए ज्ञान योग से कभी रूठना नहीं है, कुछ भी हो जाए परिवार से भी नहीं रूठना है, वो तो बाबा ने वैसे थोड़ा दे दिया, लेकिन रूठना नहीं है कभी भी। रूठे क्यों? अंदर में कूट कूट के अभिमान भरा होता है, सहज निकलता थोड़ा नहीं है वो। कोई भी कुछ कह सर, कोई नया नया ज्ञान में और कुछ भी कह दिया उसने तो लगता है ना, लेकिन वो सीखना है। हम तो देखते हैं कोई नया विज्ञान में आता है तो हम उससे भी सीखते हैं, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि कौन सी आत्मा कैसे कैसे किस पिछले जन्म पता नहीं कौन सी साधना की है, पता थोड़ा नहीं होता किसका। तो हमको सीखने की जो वृत्ति है ये अंत तक बनाए रखनी है, तो हमारे संस्कारों का परिवर्तन होगा। अगर हम अपने ही मन के ऊपर या अपने जैसे इसके ऊपर अडिग रहेंगे कि मेरे जैसा कोई है नहीं है, क्यों मुझे कोई कुछ कहता है, तो हमारे संस्कारों का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए छोटी छोटी बातों में टकराव होगा, आपस में मन मुटाव होगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर उसी में क्या, इसलिए हमारे जीवन है, ब्राह्मण जीवन है किस लिए, और हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, होना क्या चाहिए। तो बहुत निर्माण चित्त तभी बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा मुरली से प्यार, अगर मुरलीधर से बाबा से हमारा प्यार है तो मुरली से प्यार, मुरली जैसे सीने से लगा लेनी चाहिए। लेकिन प्यार करना कोई सहज काम नहीं है, सस्ता प्यार नहीं है कोई भी, बहुत महंगा प्यार है ये, टाइम देना पड़ता है इसके लिए, इतनी लंबी मुरली याद रहे सारी, कितना टाइम देना पड़ेगा उसको। और टाइम तो हम सबके पास होता ही है, ये नहीं हम कह सकते कि टाइम नहीं है, पहले हम तो हमको जांच करनी है कि कहां कहां हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है, जो हमको नहीं गंवाना चाहिए और गंवा रहे हैं, जो अभी हम कर सकते हैं और जो नहीं कर रहे हैं, और अंत में फिर पछताना पड़ता है कि ये तो मैं कर सकता था और हमने किया नहीं। तो बाबा ने कहा आंखों से खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, संसार वालों को तो पता नहीं है, और सबसे ज्यादा सजाएं जो हम ब्राह्मणों को मिलेगी उस समय जो किया है, क्योंकि हमको तो पता है ना। इसलिए शास्त्रों में सबसे ज्यादा सजा किसको मिलती है, वैश्य शूद्र क्षत्रिय को नहीं इतनी मिलती है जितनी ब्राह्मणों को मिलती है, क्योंकि हमको समझ है इसमें, तो क्या करना क्या नहीं करना है ये सब जानते हुए भी अगर हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, है ना। तो मुरली से प्यार, मुरलीधर से प्यार है तो उसकी मुरली से प्यार, उसकी सेवा से प्यार, उसके यज्ञ से प्यार, उसके परिवार से प्यार। तो जितना जितना हमारा इसके प्रति, मुरली के प्रति प्यार बढ़ता जाएगा, तो हमारी धारणाएं भी मजबूत होती जाएंगी, नहीं तो धारणा करने के लिए शक्ति आएगी कहां से, है ना। फिर धीरे धीरे हमारे जो बोल भी नपे तुले बोल होंगे, हमारे में गुण आने लगेंगे, अंतर्मुखता, क्योंकि मुरली एक ऐसा रस है जो व्यर्थ में जाने से हमको अपने आप ही रोकती है। अगर लंबे समय से हमारा मुरली से प्यार है, मुरली का मनन चिंतन करते रहते हैं, तो समय पर वो पॉइंट क्लिक होता है और वहां जाने से हमारे कदम रुकते हैं जहां हमको नहीं जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे गुण अपने आप ही आने, फिर उस चीज उन चीजों से व्यर्थ से मौन स्वतः होने लगेगा। मौन वास्तव में देखे जो हम रखते हैं तो मौन, मुख का मौन तो ठीक है, लेकिन क्या हमारे मन का मौन रहता है, मन के मौन का अर्थ क्या है। ऐसा नहीं कुछ सोचने है, कुछ बोलना नहीं है। हमने देखा कोई को होता है बहस तो लगाया, अच्छी बात लगाना चाहिए, अब कहो ऑफिस में आते हैं तो उसमें लिख कर बताएंगे, तो इसका मतलब मन तो चल ही रहा है ना। अब सामने वाले के पास में चार भाई बहने सेवा के लिए और खड़े हैं, उनको भी कुछ पूछना होगा, तो एक व्यक्ति लिख के बता रहा है, बाकी चार उसके पीछे खड़े हैं, बोल भी तो सकते हैं। मौन का अर्थ है कि जहां हमको क्या बोलना उतना ही बोले। मौन का अर्थ है कि हमारे संकल्प व्यर्थ ना चले। ये नहीं है कि मौन बिल्कुल ही शांत हो गए। नपे तुले बोल, जिस बोल में अर्थ हो, जिसमें कुछ सार्थकता हो, जिसमें कुछ सुख मिले किसी को, जिसका कुछ परिणाम हो, अच्छा परिणाम हो, तो स्वतः मौन होने लगेगा, अंतर्मुखता स्वतः बढ़ने लगेगी। बाह्य जगत की बातों से इतना रस रहेगा ही नहीं, फिर अपने आप ही ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ये है ही, ये ज्ञान किसके लिए, मौन की दुनिया में ले जाने के लिए ज्ञान है ये। ये ज्ञान तो हमको व्यर्थ से मुक्त करता है ना, भयात बातों से मुक्त करने के लिए ज्ञान है। तो मौन जो है वो तो एक परिणाम है, हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है ये, कि मौन स्वतः मौन लगेंगे। अगर हमने दवाई खाई है तो वो स्वतः काम करेगी, प्रैक्टिकल चेहरे पर दिखाई देगा ना, ये आदमी तंदुरुस्त हो रहा है। तो अगर हमारा ज्ञान एक्यूरेट हमारे दिनचर्या में शामिल है, हमारे जीवनचर्या में शामिल है, तो स्वतः ही हमारी जो कर्मेंद्रियां मौन की तरफ अपने आप ही जाने लगेंगी। जो नहीं देखना वो नहीं देखेंगी, वो उतना ही देखेंगी जो देखना है। जो नहीं बोलना वो नहीं बोलेगा मुख, जो नहीं सुनना वो नहीं सुनेगा, अर्थात उनका प्रभाव नहीं मारे पर होगा। फिर भले कैसा भी वायुमंडल हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसा भी स्थान हो, उस स्थान में भी हम अचल अडोल रह सकते हैं। तभी तो गायन है ना, निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख लाभ हानि, इसमें एक समान स्थिति तो कैसे आएगी। तो ये ज्ञान हमको मौन की, इसलिए बाबा की मुरली थी ना एक 8-10 संडे पहले थी, कि आवाज की दुनिया से परे रहने वाला बाप आवाज की दुनिया में आया है तुम बच्चों को आवाज द्वारा आवाज से परे ले जाने के लिए। तो ये जो ज्ञान की आवाज है, ज्ञान की आवाज हमको आवाज की दुनिया से परे ले जाने के लिए आई। जिसमें मुरली सुनते हैं तो मुरली के अनुसार हमारी जो विजन भी कैसा बनता है। जैसे बाबा परमधाम की बात बताते हैं, हैं तो आवाज में बोल रहे हैं लेकिन बुद्धि तो ऊपर ही जा रही ना। तो मौन हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है ना। तो और दूसरी बात, संगठन में जब चलते हैं तो इसमें सरलता बहुत चाहिए, स्वभाव को इजी बहुत रखना पड़ता है, इजी नेचर। अगर कठोर स्वभाव संस्कार है तो हम अपने फैसले पर ही अड़े रहते हैं कि नहीं, जो मैं कहता हूं यही ठीक है, यही होना चाहिए, यही फाइनल है, और फिर वहीं आपसी मनमुटाव पैदा होता है, वहीं से फिर संबंधों में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना, इसलिए बाबा ने कहा अगर राय देते हैं तो राय देते समय मालिक बनो, और जब राय सबकी पूरी हो जाती है, परिणाम निकलता, तो बालक बन को सुख स्वीकार करो। तो इजी नेचर भी अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जितना हम इजी होंगे तो पुरुषार्थ भी हमारा इजी होगा। अगर हम इजी नहीं है तो पुरुषार्थ में भी मेहनत लगेगी, और बाबा कहते हैं बच्चों की मेहनत बाबा को अच्छी नहीं लगती है। तो कौन सी मेहनत करनी है, कौन सी मेहनत नहीं करनी है, ये भी हमको थोड़ा उसकी जानकारी होनी चाहिए। मेहनत करनी है मुरली को पढ़ने की, मेहनत करनी है अच्छे अच्छे पॉइंट लिखें अलग से उसको याद, फिर उनको पॉइंट को हमको लिख के रखा नहीं देना है उनको बार बार। हम भी देखते हैं कि बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, बहुत सारे याद ही नहीं है अभी तक भी, बार बार पढ़ते हैं उनको फिर भी याद नहीं होते अभी तक भी। जिसमें चिंतन करते अच्छा चलता, लेकिन वो तो हमेशा याद रहने चाहिए ना, लेकिन अभी भी याद नहीं है। माना सही तरीके से अभी तक भी वो चिंतन जो होना चाहिए नहीं हो रहा अभी भी। इसलिए बाबा ने कहा जब तक जीना तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये तो ज्ञान सागर है, अनेक लहरें हैं उसकी। तो जब तक ये हमारी ब्राह्मण लाइफ है कभी भी हमको ज्ञान से किनारे नहीं होना है। ये ज्ञान ही हमें गुणवान बनाएगा, गुण स्वतः आने लगेगी, पुरुषार्थ के प्रति गंभीरता आती रहेगी, गुण स्वतः अपने आप आते रहेंगे, आ जाएंगे, है ना। पुरुषार्थ के प्रति गंभीर अर्थात जिसमें हमको जो पुरुषार्थ करना है, मुरली किस में जा रहे हैं तो मुरली किस में भाव उपस्थित रहे, ऐसा नहीं कि टाइम मुरली का हम योग में बैठे रहे तो भी एक संगठन एक संगठन, क्योंकि जो बल हमको मुरली में बैठने से मिलेगा, जो एटमोस्फेयर उस समय वहां है, क्योंकि पता नहीं कौन कौन सी आत्माएं उसके अंदर बैठी हैं जिनके अंदर ऐसे वाइब्रेशन, पावरफुल वाइब्रेशन है कि जो पावरफुल वाइब्रेशन सबकी बुद्धि को एकाग्र कर देंगे। जैसे दादियां होती, दादियों की उपस्थिति में कैसे मन बुद्धि सबका एकाग्र हो जाता है, उसमें क्यों नहीं बैठते, क्यों उनकी तरफ भागते हैं सभी। तो यज्ञ में भी ऐसे हैं जो हमको नहीं पता है, कुछ जो साधारण आत्मा है जो हमको दिखती नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा ऊपर वाला जानता है सबको कौन कैसा है, कौन कौन सी आत्मा के अंदर कैसा कैसा पार्ट भरा हुआ है जो एक सेकंड में पूरे एटमोस्फेयर को चेंज कर देगा। तो जिस समय जो पुरुषार्थ की दिनचर्या बनी है उसके अनुसार अगर हम चलें, मुरली के समय तो मुरली के समय वहां बैठे हम मुरली सुने ध्यान से, पूरा हम एकाग्रता पूर्वक पूरा प्रयास करें कि मन बुद्धि बिल्कुल ना भटके, उसमें उसी में इन्वॉल्व रहे। योग का टाइम है तो योग में बैठे, सेवा है तो सेवा के टाइम, ऐसे नहीं कि सेवा का टाइम है तो हम योग में बैठे हुए हैं तो फिर योग किनारे, पहले प्राथमिकता सेवा की है। जिस समय जिस चीज की जरूरत है उसी को हम प्राथमिकता दें तो हमारा पुरुषार्थ सहज हो सकता है। जो भी बीमारी है तो दवाई तो वही खानी पड़ेगी ना, दूसरी बीमारी की दवाई थोड़ी नहीं खाएंगे। अब सेवा का टाइम हो तो सेवा करनी पड़ेगी, योग थोड़ा करेंगे उस समय, उस सेवा में योग समाया हुआ है, उस सेवा में बाबा की ब्लेसिंग समाई है। आज भी था ना कुछ बैलेंस ब्लेसिंग की बात, किसमें थी, आज वरदान में थी, क्या वरदान था आज का, हाँ जी, कर्म और योग का बैलेंस, हाँ, तो ब्लेसिंग मिलती रहेगी। तो ब्लेसिंग कैसे मिलेगी, कर्म और योग, जो भी हम कर्म शुरू करते हैं पहले बाबा को समर्पण कर दें उसको, परिणाम बाद में कुछ भी हो लेकिन बाबा को समर्पण करके बैठें कि बाबा हम ये कर्म आपके श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, निमित्त आत्माओं की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है ये कर्म ठीक भी नहीं है, ऐसे भी लगता है कई बार, है ना, और वो होता भी ठीक भी नहीं होता, तो फिर क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं आपको टीचर बहन ने कह दिया, आपके इंचार्ज बहन ने, तो क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे फिर, करना पड़ेगा ना। तो वास्तव में करना है वो, क्योंकि उसके प्रति फिर हमारे संकल्प नहीं चलने चाहिए, क्योंकि निमित्त बाबा ने उनको बनाया है। बाबा ने 5-6 साल पहले मुरली में कहा था, आपको कोई कर्म करने के लिए कहते हैं और आपको वो ठीक नहीं लगता है, लेकिन निमित्त आत्मा ने कहा है और उनको निमित्त बनाया, स्वयं भगवान ने निमित्त बनाया हुआ है, तो आपको कर देना का वो, फिर उसके ऊपर संकल्प नहीं चलाने का, क्योंकि उसका जवाबदार वो निमित्त आत्मा है, आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। लेकिन वो कर्म करते भी हमारी निमित्त की स्थिति रहेगी कि हमारा कर्तव्य बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहा हूं मैं, वो कर्मों को प्रभावित न करे, संकल्प नहीं चलाने का फिर उसमें, और दूरगामी परिणाम उसके ठीक ही होते हैं, हमने कई बार देखा उसमें हमको लगता है कि गलत है, लेकिन बाबा ने कहा लोक संग्रह अर्थ ये कर्म करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसके कल्याण छिपा हुआ है। आज भी था ना कल्याण छिपे की बात, आज भी मुरली में था कुछ, हर बात में कल्याण छिपा हुआ है, आज की मुरली में था ना एक पॉइंट, है जी, वरदान में था, वरदान का लास्ट लाइन थी शायद, तो कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी युग में अकल्याण हो ही नहीं सकता है, अकल्याण के पर्दे के पीछे भी कल्याण छिपा हुआ है। तो जो भी बाबा की मुरली है उसके प्रति हमारा प्यार बढ़ता जाए, जितने भी होमवर्क, मन दिन की मुरली में से कुछ ना कुछ होमवर्क हमको जरूर करना चाहिए, तो ये हमारी निरंतर प्रोग्रेस, क्योंकि मुरली को धीरे धीरे होता क्या है, लंबे समय तक हम मुरली सुनते जाते तो फिर वैसे की वैसे लगती है, फिर उदासी जीवन में उदासी छाने लग पड़ती है, कुछ नवीनता का अनुभव होता नहीं है, फिर इधर दूर की क्लासे सुनेंगे, दूसरों की क्लासों के ऊपर भी कब हम तक हम आधारित रहेंगे, इसलिए बाबा ने कहा अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो ताकत बाबा की मुरली में है, क्या वो किसी क्लासों की है, उन क्लासों में ताकत है जो स्वयं धारणा मूर्त है, इसलिए दादियों की क्लासों में ताकत क्यों होती है, जो सीनियर भाई बहन है उसकी क्लासों में ताकत क्यों होती है, जब तक हम खुद धारणा मूर्त नहीं है तो वो उसमें ताकत भी नहीं आएगी, और बाबा तो सर्वशक्तिवान है, सुप्रीम अथॉरिटी है, इसलिए उसके एक एक महावाक्य में ताकत है, शक्ति है, तो मुरली को हम हल्के से नहीं लेना है, नहीं तो लंबे समय के बाद वो बोए दिनचर्या सामान्य लगने लग पड़ती है, तो कुछ ना कुछ उसको नवीनता हमको क्रिएट करनी है, उसमें नए तरीके से सुननी है ना, जैसे मुरली सुनने के बाद मुरली पकड़ी तो जरूरी नहीं शुरू से, बीच से शुरू कर दो, मुरली के लास्ट स्लोगन से याद करो, अभी जैसे आज ही हम बैठे हैं, तो अब हम यहां बैठे बैठे सोचते हैं कि पिछले 4 दिन के क्या क्या स्लोगन थे, क्या क्या स्लोगन थे याद आ जाएंगे अगर हम करेंगे तो, अगर हम करेंगे नहीं तो बाबा मदद क्यों करेगा, अगर हम करेंगे ना तो जरूर याद आएंगे, तो बताओ कौन कौन से थे, आज का तो बता दिया आपने, कौन सा बताया, ये सर्व बाप के साथ सर्व संबंधों का रस लो, अंत में कोई और याद ना आए, है ना, कल का स्लोगन क्या था, परसों का क्या था, नर्सों का क्या था, तरसों का क्या था, बताओ कल का स्लोगन क्या था, याद करेंगे जरूर आएगा, 100% आएगा, हाँ ये सने में अंतर नहीं होना चाहिए, यही था ना, और परसों का देखो भले देख भी लेना कोई बात नहीं, सबसे अधिक धनवान वो है जो, यही था परसों का नरसों का था ये, हाँ ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त पुरुषार्थ करो, ये था परसों का, और नरसों का सबसे अधिक धनवान वो है जो, हाँ और नरसों का क्या था, याद आ जाएगा, देखो कितने स्लोग याद आ गए, तो याद माना हमने थोड़ा प्रयास किया, उसके लिए टाइम दे रहे तो अपने आप हेल्प करेगा ना, तो भी ब्लेसिंग करेगा ना, तो क्या था परसों का, महान कार्य करना है तो मंगोत्साह के बिना महान कार्य नहीं हो सकता, एक ये था ना, है ना, और क्या था, एक स्लोगन ये था, सहनशील बनो तो सदा मौज का अनुभव करते रहेंगे, है ना, और कम से कम 1 महीने, अभी एक टारगेट रख लेना, जैसे 1 महीने के स्लोगन हमको याद रहने चाहिए, हमने पिछले महीने करके देखा था और 25 स्लोगन तो याद हो गए थे, रोज उनको रिपीट भी करना पड़ता बार बार, और अगर हम उनको रिपीट करना शुरू करें तो 10-15 तो आ जाएंगे, मैं समझता हूँ। पिछले महीने में एक स्लोगन सबसे पहले तो था कि विश्व परिवर्तक आत्मा वो है जो एक सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। एक ये था। एक स्लोगन था संबंध और स्थिति में हल्के बनो, दिनचर्या में नहीं। एक ये स्लोगन था। साधनों को साधना के लिए यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। एक ये स्लोगन था। धीरे धीरे करेंगे तो 10-15 तो आ जाएंगे। देखो ये भी तो मन विस्मृत हो गया, हमने नहीं देखा बार बार तो भूल गया वो, तो बार बार हमको देखना पड़ेगा। अब फिर दोबारा जाके पढ़ लूंगा मैं जाके। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना है? कोई क्वेश्चन? सभी म्यांमार से ही है। म्यांमार का अर्थ क्या है बताओ? मारने वाले, माया को मारने वाले। तो सबसे पहले माया को मारेंगे आप भी, तभी तो बाबा का यज्ञ की प्रत्यक्षता होगी। इसलिए रुका हुआ है, जब तक आपने माया नहीं मारी तो तब तक रुको, आपके कंधों पर ही सारी जवाबदारी है। पहली बारी कौन आया? अच्छा हाँ। क्या अच्छा, पहली बारी अच्छी अनुभूति हुई? ये जो बाबा का जो बदल गया परिवर्तन, संडे की मुरली थी 83 की है ना, बाबा ने उसी में कहा था कि परिवर्तन, बाप के आने का भी कार्यक्रम परिवर्तन होगा। और हम देखा यहाँ इतने सालों से देखते बहुत परिवर्तन हो गया है ना। हम तो पहले यहाँ ओम शांति वन में मिले थे, ओम शांति वन में बहुत बार मिलते रहे। पहला टर्न और लास्ट टर्न विदेशियों का होता था, तो यहाँ बाबा टोली देते थे। और यहाँ तो मधुबन वाले मिलते थे, तो मधुबन वाले तो छोटी छोटी बातें बाबा से पूछ लेते थे। क्या पूछते थे? बाबा आज किचन का पतीला टूट गया, आज क्या करना है? ऐसी बातें बाबा को मधुबन वाले पूछ लेते थे, बताओ कितनी घरेलू बात थी वो सारी। और यहाँ बाबा टोली खिलाते थे, और जो बच्चे सामने मिल रहे हैं, बाबा तो बैठे हुए हैं शाम को 6 बजे से लेके सवेरे तक बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे होते थे सामने सो भी जाते थे, तो बाबा कहते उनको उठा के ले जाओ। तो भगवान बुला रहा है कि मिलो आगे फिर से। और अब टाइम कौन सा आ गया? ये भी दिन और सौभाग्य जो पहुंच गए है ना। तो बाबा को जिसको अनुभव कराना है ना, वो कहां भी रह के करा देगा। वो लास्ट में आए सो फास्ट, लास्ट सो फास्ट सो फास्ट। टाइम नहीं हमारा बेस्ट जाना चाहिए। पढ़ाई के ऊपर विशेष अटेंशन, टाइम के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए। जो भी दिनचर्या उसके ऊपर एक्यूरेट, बाबा से सच्चाई सफाई, पूरा मर्यादाओं का पूरी तरह से पालन, परिवार से हमारे संबंध अच्छा बना रहे। संबंध भी तब बनेगा बाबा ने कहा, प्यारा बनने का पुरुषार्थ कभी नहीं करना है। पुरुषार्थ प्रिय होंगे तो सबसे प्यारे हो जाएंगे। न्यारा बनने का पुरुषार्थ करना है, इस बॉडी से न्यारा बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना हम इस बॉडी से न्यारा बनेंगे तो उसका अनुभव होगा, क्योंकि बाबा शरीर से रहित है, वो उसके जैसा बनना पड़ेगा। तो जितना समय हम अपने को उसके जैसा स्थित रखेंगे तो उसके प्यार की असीम बरसात होती रहेगी, और बाबा की छत्रछाया में हमारा जीवन सुरक्षित है। और उसकी छत्रछाया उसकी पढ़ाई, उसकी सेवाएं, उसके कर्तव्य, तो हमारे संसार पूरे संसार के प्रति बहुत बड़ी जवाबदारी है, बहुत बड़े कर्तव्य हैं। जो लंबे समय से जिन दादियों ने यज्ञ को वहां से यहां लेके आए, कितने साल हो गए? 81 ईयर्स। अभी तो ज्ञान कितना सरल तरीके से हमको मिल रहा है, उसमें ज्ञान क्या था? कितना स्पष्ट था ही नहीं इतना स्पष्ट। लेकिन उन दादियों ने जो छोटे छोटे बच्चे थे, आज इस यज्ञ को पूरे विश्व में फैला दिया। बाबा के यज्ञ की जो कर्तव्य हैं, उसकी जिम्मेवारियां को पूरे संसार में कैसे निभाया है। जो उनकी साधनाओं का सुनते हम, कितना त्याग था, कितना तपस्या था उनकी। तो हमें अपनी त्याग तपस्या से कभी भी जुदा नहीं होना है, किनारा नहीं करना है, साधनों के वशीभूत नहीं होना है। क्योंकि वर्तमान में साधनों का, बाबा ने कहा अंत में तुम बच्चों के आगे साधनों का ढेर लग जाएगा, और वो देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, ना चाहते भी साधनों में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। कहीं साधनों के पीछे हमारी साधना ना लोप हो जाए, साधना ना छूट जाए कहीं। क्योंकि जो सुख हमारी साधना में है, साधनों में तो हमारी एनर्जी चली जाती है। हाँ, साधनों का उपयोग तो करना है, लेकिन कायदे मुजब, जितना हमको जरूरत है, टू मच ने उसमें चले जाना है। साधनों के यूज में हमारा टाइम बर्बाद हो जाए तो क्या कहेंगे। इसलिए साधना के ऊपर हमारा बहुत अटेंशन, साधना हमारे कर्मों में साधना हो, हमारे बोल में साधना हो, हमारी दृष्टि में, हमारे व्यवहार में, संबंध संपर्क में, साधना के अनेक प्रकार है। साधना नहीं कि बैठे बैठे ये नहीं, बहुत प्रकार की साधना है। और प्रश्न किसी को, कुछ कोई क्वेश्चन? सब प्रश्न से पार सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा खुश, कुछ भी रहे, खुशी कभी नहीं छोड़नी है। चाहे असफलता मिले तो भी खुशी नहीं छोड़नी है, योग लगे ना लगे खुशी नहीं छोड़नी है। कम से कम बैठना जरूर है, बैठे हैं इतने में खुशी होना, कम से कम बैठा तो सही ना, देखो मैं कितना अच्छा हूं, योग के लिए कम से कम टाइम तो दिया ना, लगे ना लगे बात की बात है, लेकिन योग लगाना भी है, इसी में खुश नहीं हो जाना है भी। वो भी मियां मिठू नहीं समझ लेने का। बाबा ने कहा योग लगे ना लगे आप आकर बैठ जाओ, अमृत विले के महावाक्य में है। तो किसी भी बात में हमको दिल शिकस्त नहीं होना है। ब्राह्मण जीवन मौज का जीवन है, खुशी से खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाबा को याद करो बस। फिर बाबा कहते बाबा को याद करो, थोड़ा मनन चिंतन करो, फिर सेवा भी करो, अपने विक्रम मनुष्य कर दो, बाप का परिचय भी दो, एक बात के धीरे धीरे फिर बाबा 50 बातें बता देते। ओके, ओम शांति।